आज है 9 मार्च दिन बृहस्पतिवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। बीबीसी हिंदी से विशेष इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जरूरत पड़ने पर बसपा से हाथ मिलाने के संकेत दिए।
हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए।
मुठभेड़ में मारे गए बेटे की लाश लेने से इनकार करने वाले पिता की संसद में तारीफ की गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने।
मोहम्मद सरताज जैसे लोगों के ऊपर सरकार को भी नाज है और पूरे सदन को भी निश्चित रूप से नाज होगा।
कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में दो चरमपंथी मारे गए, 15 वर्ष के एक किशोर की मौत। और जानेंगे कि अजमेर दरगाह बम विस्फोट कांड के लिए दोषी पाए गए दो लोगों का हिंदुत्व की राजनीति से क्या संबंध है। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिव्या आर्य से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीबीसी हिंदी के साथ विशेष बातचीत में कहा है कि 11 मार्च का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनावी नतीजा उनके और कांग्रेस के गठबंधन के पक्ष में आएगा। हालांकि उन्होंने ये संकेत भी दिए कि चुनाव परिणामों में यदि उन्हें या किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति शासन की जगह वो मायावती से हाथ मिलाना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश को दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी रिमोट कंट्रोल से चलाए। जर्मन चांसलर एंगेला मर्कल ने तुर्की के राष्ट्रपति का जर्मनी के हालिया बर्ताव की नाजी दौर के साथ तुलना करने की निंदा की है। बर्लिन में संसद को संबोधित करते हुए मर्कल ने कहा, ऐसी तुलना कष्टदायी और गलत है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान ने जर्मनी पर नाजी दौर की कार्रवाई करने का आरोप तब लगाया था जब कई जर्मन शहरों ने तुर्की के मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा की जा रही रैलियों को रद्द कर दिया था। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा,
Das alles ist zudem so überaus traurig, weil NS-Vergleiche grundsätzlich...
मर्कल कह रही हैं कि ये बहुत दुखद है क्योंकि नाजी जर्मनी के साथ तुलना हमेशा बहुत कष्टदायी होती है। ऐसी तुलना मानवता के खिलाफ किए गए उन अपराधों को छोटा बना देती है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज के जर्मनी की तब से तुलना को बंद करना ही होगा। जर्मनी और तुर्की के नजदीकी संबंधों के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने कहा है कि उत्तर कोरिया के साथ कूटनीतिक रिश्ते नहीं तोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि मलेशिया को कोरिया से बातचीत जारी रखनी चाहिए ताकि क्वालालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उत्तर कोरिया के नेता के सौतेले भाई की हत्या के बाद बढ़े तनाव को कम किया जा सके। उत्तर कोरिया ने 9 मलेशियाई नागरिकों को देश छोड़ने से रोक दिया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कार्यक्रम के लिए काम कर रहे 2 मलेशियाई नागरिकों को जाने दिया गया है। उधर मलेशिया ने क्वालालंपुर में उत्तर कोरिया के दूतावास को सील कर दिया है ताकि उसके अंदर फंसे हत्या के 3 संदिग्ध बाहर ना निकल पाए। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक के शहर तिक्रित के नजदीक एक गांव में हुए 2 आत्मघाती बम धमाकों में 26 लोग मारे गए हैं और 25 जख्मी हुए हैं। ये बम विस्फोट हजाज गांव में आयोजित एक शादी समारोह में हुए जब वहां मेहमानों का खासा जमावड़ा था। खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि उनके 2 लड़ाकों ने ही इसे अंजाम दिया। स्थानीय सरकार के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी एपी से कहा है कि मारे गए लोगों में से अधिकांश बच्चे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि उत्तरी म्यांमार में चल रही लड़ाई से बचने के लिए 20,000 से ज्यादा लोगों ने चीन से शरण मांगी है। कई शरणार्थी अपने थोड़े से सामान के साथ भाग आए और अब चीन के सीमावर्ती इलाके नानसान में अस्थायी कैंपों में रह रहे हैं। म्यांमार सरकार और चीन के विद्रोही गुटों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी के चलते इस हफ्ते फिर हिंसा भड़की जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई। चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा, गेंग शुआंग कह रहे थे, चीन म्यांमार सीमा पर शांति के लिए म्यांमार की स्थिति का संभलना जरूरी है। चीन की इस पर पैनी नजर है। हम सभी गुटों से अपील करते हैं कि फौरन हिंसा को रोकें और सीमा पर शांति बहाल करने के लिए कदम उठाएं। मिस्र से भारत आई दुनिया की सबसे ज्यादा वजन वाली महिला ईमान अहमद का आज सफल ऑपरेशन हो गया है। मुंबई के अस्पताल जहां उनका इलाज चल रहा है ने दावा किया है कि 500 किलो वजन की ईमान अहमद ने अब 100 किलो वजन कम कर लिया है। ऑपरेशन में ईमान अहमद के पेट का बड़ा हिस्सा निकाल दिया गया ताकि उनकी भूख कम हो जाए और वो कम खाना खाएं। भारत आने से पहले ईमान अहमद ने 20 साल से अपना घर नहीं छोड़ा था। ब्रिटेन के बच्चों को विदेश में रहने के लिए भेजने के एक प्रवासी कार्यक्रम को बच्चों के खिलाफ हिंसा का सबसे आपत्तिजनक मामला बताया गया है जहां बच्चों के साथ यौन हिंसा की गई। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में हुए मतदान के बाद राज्य के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लखनऊ में आराम कर रहे हैं, पर उनके दिमाग में चुनाव नतीजे आने के बाद के राजनीतिक दृश्य बन बिगड़ रहे हैं। बीबीसी हिंदी से आज दोपहर एक विशेष बातचीत में उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाएगा, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या जरूरत पड़ने पर वो बहुजन समाज पार्टी का साथ लेंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं चाहेगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे और भारतीय जनता पार्टी रिमोट कंट्रोल से राज्य में सरकार चलाए। स्पष्ट है कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना को सिरे से खारिज नहीं किया। आज कार्यक्रम की शुरुआत इसी खास इंटरव्यू से, जिसमें अखिलेश यादव ने बीबीसी संवाददाता विनीत खरे और दिलनवाज पाशा को राजनीति, पारिवारिक झगड़े और चुनाव संबंधी सवालों के खुलकर जवाब दिए। सुनिए इंटरव्यू के संपादित अंश।
पर्सनल लेवल पर मैं ये कह सकता हूँ, हालांकि कार्यकर्ताओं को भी इंतजार है, जो कैंडिडेट्स मेहनत की लड़ रहे हैं उन्हें भी इंतजार है, हमारे विरोधी लोगों को ज्यादा इंतजार है कि उन्हें लगता है कि उनकी सरकार बनने जा रही है।
अच्छा।
मैं पर्सनली इसलिए इंतजार कर रहा हूँ कि चुनाव बड़ा था और तमाम परिस्थितियों से निकल करके समाजवादी पार्टी आई और कैंपेन भी अच्छा चला, अब रिजल्ट का इंतजार है। मैं चाहता हूँ अच्छा रिजल्ट आए।
कुछ लोग कहेंगे कि आप पर, अगर आप विजयी होते हैं, आप परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं, तो जो जिस तरह से आप पार्टी के प्रमुख बने उस पर एक स्टैंप होगा, लेकिन अगर नहीं अच्छा प्रदर्शन होता है तो आपके विरोधियों को बल मिलेगा, ये क्या स्टेक पर है आपके लिए?
स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव भी लड़ना पड़ा और पार्टी में जो बातें हुई थी उनको हटा करके और काफ़ी चीज़ें अलग हुई पार्टी में इस बार, और एक बार लगा कि हम तीन ही चार लोग कैंपेन कर रहे हैं, मैं कर रहा था, आजम खान साहब कर रहे थे, डिंपल प्रचार कर रही थी, तो मैंने देखा कि इतना बड़ा कैंपेन, विरोधी लोगों के पास तो 20-30 हेलीकॉप्टर हैं, इतने मंत्री हैं, इतने बड़े चेहरे हैं, और हम तीन लोग
हेलीकॉप्टर पे, तो आप भी थे?
नहीं, हेलीकॉप्टर हम 2-3 थे लेकिन हमारे विरोधी लोगों के पास तो 30-40 हेलीकॉप्टर थे। तो अगर मैं दिन में 7 सभा कर रहा हूँ, डिंपल 2-3 कर रही हैं, आजम साहब 2-3 कर रहे हैं, तो हम ज्यादा 10 सभाएं कर पा रहे थे, लेकिन विरोधी लोगों ने तो 40 हेलीकॉप्टर, और मान लीजिए अगर 40 3-3 मीटिंगें करें तो देखिए हमसे कितना आगे थे वो।
अगर हंग असेंबली होती है अखिलेश, तो क्या आप प्रेफर करेंगे अलायंस करना बीएसपी के साथ, या फिर दूसरे दल हैं, या फिर आप प्रेसिडेंट्स रूल की बात करेंगे?
देखिए हंग असेंबली तो नहीं होने जा रही है, ये तो मैं कह सकता हूँ।
अगर हो जाए मतलब, देखिए
हंग असेंबली तो नहीं होगी।
अच्छा।
और हंग असेंबली नहीं होगी, मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, मुझे भरोसा है अपने काम पर, इसीलिए मैंने नारा भी दिया था कि काम बोलता है, और हम तो सवाल करते रहे प्रधानमंत्री से, बीजेपी के लोगों से कि अपना काम बता दो। मुझे यकीन है कि महिलाओं ने, नौजवानों ने, और जो काम पे भरोसा करते हैं, और किसानों ने मदद समाजवादियों की होगी, और आप देखिएगा एक दिन बीच में है, फिर तो हमें और आपको सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा।
और ज्यादातर जो मेरी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बात हुई, उनको बड़ा आश्चर्य कि आपने 100 सीटें दी, और एक मैसेज गया कि शायद आपको खुद की पार्टी के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अकेले जीत पाएंगे, और 100 सीटों की किसी ने उम्मीद नहीं की थी, ये क्या कहानी है, कैसे साथ में आए?
मैं राहुल गांधी जी और के साथ पहले से जानता हूँ, लोकसभा में हम साथ रहे हैं, और गठबंधन इसलिए किया कि कोई बात पक्की हो जाए। जहाँ तक बात सीटें ज्यादा देने की है, मैंने हर भाषण में कहा, प्रेस के लोगों से कहा कि जब दिल बड़ा होता है तब दोस्ती मजबूत होती है, कम से कम समाजवादी लोगों ने बड़े दिल से कांग्रेस को साथ लिया है, एक अच्छी दोस्ती और मजबूत दोस्ती की है, और कंजूस के साथ अगर दोस्ती हो जाएगी, मैं तो कहूँगा कि जिस कभी कंजूस के साथ दोस्ती होगी तो बहुत दिन चलने वाली नहीं है।
आपका बड़ा राजनीतिक दुश्मन कौन है, भाजपा या बसपा?
फिलहाल तो अगर दुश्मन नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे हमसे सबसे ज़्यादा विरोध कौन कर रहा है, लड़ाई कौन बड़ी लड़ रहा है, तो मैं कहता हूँ बीजेपी और प्रधानमंत्री जी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार को तो चुनाव में ये लगा कि प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं लग रहा है दिल्ली में, इसलिए वो लखनऊ और वाराणसी में काफ़ी दिन रहे। हमने तो ये भी कहा कि अगर दिल ना लग रहा हो तो अल्लाह बदली कर लें कुर्सी की, उनका दिल नहीं लगा बहुत ज़्यादा दिल्ली में, चुनाव जब तक यूपी रहा उनका दिल यूपी में लगा रहा।
एक क्रिटिसिज्म आपका है अखिलेश की, ये जो गायत्री प्रजापति जी का पूरा मामला है, इसको आप कैसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे?
देखिए मैं ये कह सकता हूँ, गायत्री प्रजापति पे जो बातें थीं वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है उसमें, और मैंने पुलिस को निर्देश दिया कि आप बिल्कुल कार्रवाई कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बदायूं वाले मामले में, और प्रधानमंत्री जी जब चुनाव में आए तो उन्होंने कहा कि बदायूं का कारनामा, और वो पुरानी घटना थी 3 साल पहले, उसमें सरकार को क्लीन चिट मिली है, सरकार का कोई दोष नहीं था, घटना दूसरे तरह की थी, परिवार के लोग उसमें रिश्ता रखते थे। फिर एक सवाल सुल्तानपुर का उठा कि सुल्तानपुर में एक महिला के साथ एक विधायक ने ऐसा किया, वो भी बात गलत निकली। प्रजापति, मैं ही नहीं कहता हूँ प्रजापति, क्योंकि मैं सरकार में हूँ, आज भी मेरे होम मिनिस्टर मेरी जिम्मेदारी है। मैंने कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी और उनके लोग पकड़े भी गए, मैंने पुलिस को निर्देश दिया कि आप कार्रवाई करिए। और मैं चुनाव
मंडल में क्यों है वो,
चुनाव के बीच में मैं कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहता था जहां हमारी पार्टी को गलत मैसेज आए। मैंने कहा अगर दोषी हैं मैं उसी दिन उनको हटा दूंगा।
अगर आप बड़ी फाइट बीजेपी से मान रहे हैं तो क्या ये समझा जाए कि चुनाव नतीजों के बाद बसपा से गठबंधन का रास्ता बन रही है?
गठबंधन में नहीं, गठबंधन के लिए मैं अभी इसलिए नहीं कह सकता हूं कि हम खुद सरकार में बनाने जा रहे हैं। और जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उनको मैंने एक रिश्ते से हमेशा सम्मान दिया है, तो ये स्वाभाविक है लोग ये मानेंगे कि अगर कहीं कमी होगी तो हम बहुजन समाज पार्टी के साथ ना चले जाएं या बहुजन समाज पार्टी का सहयोग ना ले लें। ये बात अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहता हूँ हमारी और कांग्रेस, समाजवादी और कांग्रेस का बहुमत आने वाला है, बहुमत के साथ सरकार बनेगी।
आपने अभी तक गठबंधन को लेकर जो हमारे जितने भी सवाल हैं स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, तो क्या ये माना जाए कि आप संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी जिससे मिलेगा साथ लेंगे?
मैं अभी भी कहना चाहता हूं, मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी को किसान, महिलाओं ने और नौजवानों ने समर्थन दिया है। बीजेपी कोई काम नहीं बता पाई है, परिस्थितियां क्या बनेंगी वो तो वोट के बाद पता लगेगा, खुल जाएगा। समाजवादी और कांग्रेस दोनों ही को अच्छी सीटें जीतना नहीं, अकेले ही सरकार बनाएंगे। हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा।
आपके और अभी मुलायम सिंह जी के बीच क्या कैसे संबंध है, थोड़ा बताएं, थोड़ा बातचीत हो रही है कि रुकी हुई है कि भी सोच विचार हो रहा है दोनों तरफ से?
मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नेताजी को 11 तारीख के बाद मिलूंगा,
नतीजों के साथ
मिलूंगा।
आखिरी बार आपकी क्या बात हुई है, थोड़ा बताइए।
नहीं, चुनाव प्रचार के बारे में बात हुई थी और जहाँ नेताजी जाना चाहते थे वो नेताजी गए और हम लोगों ने कोई जिद नहीं की कि नेताजी आपको कहाँ जाना है, और हमने यही माना था कि नेताजी जहाँ जाना चाहेंगे हम उन्हें भेजेंगे, वो प्रचार करेंगे। अभी आखिरी में वो आखिरी चरण में जौनपुर गए थे, अच्छी बात है, और अब मुलाकात मेरी होगी 11 तारीख के परिणाम के बाद।
समाचार एजेंसी ANI को साधना जी ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो चाहेंगे कि प्रतीक राजनीति में आए।
देखिए, मुझे वैसे कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में कोई आना चाहेगा तो उसको कौन रोकेगा, और हम तो चाहते हैं कि जो काम कर सकता है राजनीति में अच्छा उन सबको आना चाहिए।
ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा कि कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगे और भारतीय जनता पार्टी रिमोट कंट्रोल से शासन करे। उनसे बात कर रहे थे हमारे संवाददाता विनीत खरे और दिलनवाज पाशा। चर्चा उत्तर प्रदेश की जारी है। मंगलवार की रात को लखनऊ में चरमपंथियों से हुई कथित मुठभेड़ की गूंज आज संसद में सुनाई पड़ी। आपने सुना होगा कि इस मुठभेड़ में मारे गए सैफुल्ला के पिता मोहम्मद सरताज ने यह कहकर अपने बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया था कि जो मुल्क का ही नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। इस पर आज लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मोहम्मद सरताज की दिल खोलकर तारीफ की।
जब उत्तर प्रदेश पुलिस सैफुल्ला जो मारा गया है उसके पिता से मिले और उन्होंने उसकी लाश को हैंडओवर करने की बात कही, तो जो स्टेटमेंट दिया है सैफुल्ला के पिता मोहम्मद सरताज ने कि जो देश का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकता है, उसने कोई सही काम तो किया नहीं है, मुझे उसका मरा हुआ मुंह तक नहीं देखना है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सैफुल्ला के पिता के प्रति सरकार की तरफ से भी पूरी सहानुभूति व्यक्त करता हूं और मैं समझता हूं पूरा सदन सैफुल्ला के पिता सरताज के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करेगा। उन्हें ऐसे बेटे की देशद्रोही हरकतों के कारण अपनी औलाद को खोना पड़ा है, और इतना ही नहीं मैं कहना चाहूंगा कि मोहम्मद सरताज जैसे लोगों के ऊपर सरकार को भी नाज है और पूरे सदन को भी निश्चित रूप से नाज होगा।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह, बहरहाल लखनऊ में हुई मुठभेड़ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के अलग अलग दावे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ में मारे गए सैफुल्ला की इंटरनेट और मोबाइल पर गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। ये भी कहा जाता है कि इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल करने वाला हर शख्स निगरानी में होता है। किस तरह होती है स्नूपिंग या निगरानी, बता रहे हैं सलमान रावी इस रिपोर्ट में।
इंटरनेट हो या मोबाइल, ताक झांक से कोई नहीं बच सकता।
ये भी कहा जाता है कि अंकल सैम यानी अमेरिका मोबाइल और इंटरनेट की हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखे हुए है। विश्व के बदलते हुए परिदृश्य में अब सुरक्षा एजेंसियां भी इंटरनेट और मोबाइल की जमकर मॉनिटरिंग कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि इसी मॉनिटरिंग की वजह से विश्व भर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों पर अंकुश रखने में काफी हद तक कामयाबी भी मिली है। साइबर सिक्योरिटी के विशेषज्ञ प्रशांतो राय कहते हैं कि इंटरनेट पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों के जरिए निशानदेही की जा सकती है।
कॉमन टेक्निक यही है कि किसी भी जैसे चैट रूम या किसी भी ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या कभी कभी क्लोज ग्रुप्स में भी, लार्ज क्लोज ग्रुप कोई अगर रिपोर्ट करे इन्हें, तो पैटर्न्स ऐसे होते हैं जैसे लोकेशन, टाइम ऑफ पोस्टिंग, लैंग्वेज एक बहुत की मार्कर है। वो अपने दूसरे फेसबुक पोस्ट पे कोई दूसरे विषय पे, वो तो ये विषय पे शायद नहीं करेगा अपने फेसबुक पोस्ट पे, पर दूसरे चीजों पे अगर कर रहा हो पर वो लैंग्वेज से मैच हो जाए या पैटर्न से या टाइम से या लोकेशन से मैच हो जाए, वो एक काफी कॉमन टेक्निक है पैटर्न मैचिंग का।
मगर प्रशांतो का कहना है कि जिन ग्रुपों में एनक्रिप्टेड चैट होती है जैसे कि व्हाट्सएप, उनको भेदना अब भी काफी मुश्किल काम है।
अभी तो काफी ये प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि काफी ऐसे फोरम्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इनक्रिप्टेड है, उसमें से डेटा निकालना तो बहुत ही मुश्किल है, मेटा डेटा निकालना भी बहुत मुश्किल है। जैसे व्हाट्सएप की कॉल सारे इनक्रिप्टेड हैं, एजेंसीज को काफी परेशानी है इस चीज पे। कुछ एजेंसीज हैं जैसे NSA है अमेरिका की, वो 64 या 128 या 256 बिट भी क्रैक कर सकते हैं, पर ये किसी ने इसको प्रूव नहीं कर पाया है।
साइबर सिक्योरिटी के एक और एक्सपर्ट और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रक्षित टंडन कहते हैं कि ये सब कुछ तकनीक करती है। इंटरनेट पर ऐसे फिल्टर लगे हुए हैं जो अपने आप चीजों का पता लगाकर खुद ब खुद अलर्ट जारी करते रहते हैं।
टेक्नोलॉजी करती है, इसमें कोई आदमी बैठ के नहीं नजर रख रहा होता है। तो मैंने टेक्नोलॉजी में फिल्टर डाले हुए हैं कि अचानक से अगर कोई आदमी दिन में 10 बार हाउ टू मेक अ बॉम्ब सर्च कर रहा है गूगल पे, तो गूगल को अलर्ट आ जाए कि फिर गूगल उसको नजर रखे कि भाई ये आदमी कर क्या रहा है। ये
सामाजिक संगठनों को इंटरनेट पर सरकारी तांग झांक पर आपत्ति रही है और वो इसके खिलाफ आवाज भी उठाते रहे हैं। वैसे लखनऊ में हुई मुठभेड़ को लेकर 2 प्रदेशों की पुलिस के अलग अलग बयान हैं, मगर अब जांच से ही साफ हो पाएगा कि अगर मुठभेड़ में मारा गया सैफुल्लाह पुलिस और जांच एजेंसियों की निगरानी में था तो फिर उसे पहले क्यों नहीं पकड़ा गया। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
खबर सच है अगर BBC पर है।
BBC हिंदी सेवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर, मैं हूं राजेश जोशी। उत्तर प्रदेश के बाद अब कश्मीर का हाल। भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा जिले के पदगामपुरा गांव में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 चरमपंथी मारे गए। जैसे ही सुरक्षा बलों ने इलाके का घेरा डाला और फायरिंग शुरू हुई, स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसमें 15 बरस के किशोर की जान चली गई। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
4 घंटों तक चली इस मुठभेड़ में 2 चरमपंथी मारे गए। इस दौरान 15 साल का युवक आमिर वानी सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़पों के दौरान घायल हो गया, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इलाके में चरमपंथियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू होते ही स्थानीय लोग एनकाउंटर साइट की तरफ बढ़ने लगे, जिसके बाद सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच झड़पें शुरू हुई। स्थानीय लोगों का इल्जाम है कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां और पैलेट चलाए, जिसके नतीजे में कई एक लोग घायल हो गए। तहम कश्मीर जोन के IG पुलिस जावेद मुश्तबा जिलानी का कहना था कि स्थानीय लोग एनकाउंटर साइट की तरफ भड़ने लगे, जिस दौरान क्रॉस फायरिंग में आमिर को गोली लग गई।
ये जो है ये एनकाउंटर साइट के पास दूर से पत्थर मार रहे थे, तो जो एनकाउंटर साइट पे जो एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा था उसमें एक स्प्रे बुलेट जो है वो उसको लगी।
आमिर की मौत के बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन हुए और आजादी के हक में नारे लगाए गए। इलाके में प्रदर्शन के दौरान एक और युवक की मौत हो गई है। ताहम डॉक्टरों का कहना है कि 23 साल के जलालुद्दीन नामी युवक के जिस्म पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं थे। डॉक्टरों ने अनुमान लगाया है कि जलालुद्दीन की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई होगी। अलगाववादियों ने आमिर की मौत को भारतीय सेना के प्रमुख बिपिन रावत के उस बयान के साथ जोड़ा है, जो उन्होंने हालिया दिनों में कश्मीर में एनकाउंटर साइट्स पर लोगों की भीड़ उमड़ आने के हवाले से दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एनकाउंटर साइट्स पर जाने वाले प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने ट्वीट कर कहा है कि पुलवामा में मारे गए 15 साल के आमिर की मौत सेना प्रमुख के बयान को अमलाने की शुरुआत है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में आम लोगों की हलाकतों के खिलाफ शुक्रवार को कश्मीर बंद बुलाया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गिलानी गुट के प्रवक्ता अयाज अकबर ने बताया,
ये जो कल आज भी एक और आम शहरी को, एक आम तालिबे इल्म को, नहते तालिबे इल्म को, बल्कि वो उम्र में भी बहुत छोटे हैं, उनको जिस तरह से हलाक किया गया है, ये सरकारी दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। तो हड़ताल की काल तो पहले से जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें ये हड़ताल, कल की हड़ताल की काल दी गई थी, और ये जो आज सिविल किलिंग हुई है, ये नया वाका है, कोइंसिडेंस हुई है, तो हमने कहा है कि इसके लिए जुमा नमाज के बाद पूरा अमन मुजाहरे भी मुनाकिद किए जाए।
बीते एक महीने में दक्षिणी कश्मीर के कई इलाकों में झड़पों के दौरान अभी तक 10 से भी ज्यादा चरमपंथी मारे गए हैं, जबकि पुलिस और सेना को भी इन झड़पों के दौरान जानी नुकसान उठाना पड़ा है। माजिद जहांगीर, बीबीसी हिंदी, श्रीनगर।
राजस्थान में जयपुर की एक विशेष अदालत ने बुधवार को अजमेर दरगाह बम विस्फोट कांड के सिलसिले में 3 लोगों को दोषी करार दिया था, जिनमें से एक सुनील जोशी की हत्या की जा चुकी है। इन तीनों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बताया गया था, पर आरएसएस का कहना है कि उनका संघ से कोई संबंध नहीं था। कौन थे अजमेर दरगाह में विस्फोट करके 3 लोगों की हत्या करने वाले लोग, बता रहे हैं जयपुर से नारायण बारेठ।
धमाकों में कसूरवार करार भावेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता जेल में है, तो मध्य प्रदेश के सुनील जोशी की 9 साल पहले वहां हत्या हो चुकी है। सुनील जोशी की हत्या के मामले में मध्य प्रदेश के देवास में मुकदमा भी चला, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। पिछले माह अदालत ने इस मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत 8 लोगों को बरी कर दिया। इसके साथ ही ये राज भी दफन हो गया कि सुनील जोशी को किसने मौत के घाट उतारा था। अजमेर धमाके की प्रारंभिक जांच करने वाले राजस्थान पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते ATS ने देवेंद्र गुप्ता का चार्जशीट में विवरण दिया है। चार्जशीट के मुताबिक वो मध्य प्रदेश के महू में RSS का पदाधिकारी रहा है और बाद में झारखंड के जामताड़ा में प्रचारक की हैसियत से काम करता रहा। उसके सुनील जोशी से गहरे संबंध रहे हैं। चार्जशीट के मुताबिक देवेंद्र गुप्ता विदिशा के सुनील जोशी से बहुत प्रभावित था। ATS ने बाद में अपनी पड़ताल में इन दोनों को RSS से विलग होकर अलग रास्ता अख्तियार करने वाले बताया है। यूं तो देवेंद्र गुप्ता अजमेर के निवासी हैं, लेकिन अपने इन इरादों की खातिर वे मध्य प्रदेश और झारखंड में काम करते रहे। पुलिस ने अपनी जांच में दिवंगत सुनील जोशी की निजी डायरी का भी जिक्र किया है। सुनील जोशी की इस डायरी से पुलिस को इस समूह के खास हिंदूवादी दृष्टिकोण और संपर्कों का पता लगाने में मदद मिली। गुजरात में भरूच का भावेश पटेल पुलिस जांच में खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताता है। उसे दरगाह में विस्फोट की सामग्री रखने वाले के बतौर रेखांकित किया गया है। भावेश ने अपराध में भागीदारी की स्वीकारोक्ति की है। भावेश, देवेंद्र और दिवंगत सुनील जोशी तीनों ने ना विवाह किया और ना ही अपना पारिवारिक संसार बसाया। उधर RSS ने इन तीनों का संगठन से कोई भी संबंध होने से इनकार किया है। RSS के एक पदाधिकारी ने BBC से कहा, इनमें से किसी का भी RSS से कोई ताल्लुक नहीं है। इस धमाके की जांच पड़ताल बहुत लंबी चली, इसमें कई उतार चढ़ाव आए। कभी हालात ने गवाही दी तो कभी दलील और दस्तावेज सच्चाई तक पहुंचने का जरिया बने। नारायण बारेठ, जयपुर, राजस्थान।
और अब आपको इंतजार रहता है आपकी चिट्ठियों का, वक्त है आपकी राय का।
आपकी राय। नमस्कार, राजेश प्रियदर्शी की ओर से, और मेरे साथ चिट्ठियां लेकर मौजूद हैं सुशीला सिंह।
जी, सबसे पहले चिट्ठी मैं राजेश जी लेना चाहूंगी अभय कुमार निराला की, जो बगेन बक्सर बिहार से। इन्होंने सभी की तारीफ की है। इन्होंने कहा है, पाकिस्तान से वसतुल्ला खान, वाशिंगटन से ब्रजेश भेजते हैं डायरी, उनके लिए उनकी तारीफ की है। ऐतिहासिक विवेचना के लिए रेहान फजल, दुनिया जहां के लिए निखिल रंजन।
बहुत ही खूबसूरत लिखाई में, और मुझे कहीं अपना नाम भी दिख रहा है। इन्होंने मेरे बारे
जी
में
आपके
भी कुछ
बारे में भी लिखा है कि मोहनलाल शर्मा, राजेश प्रियदर्शी, C2 तिवारी, नीरज सिन्हा, मनीष शांडिल्य और खेत के साथ दिमाग से छूट गए सहित सभी लोगों के प्रेम भरे लाल गुलाल के साथ होली मुबारक हो।
इनको भी होली बहुत मुबारक, और इन्होंने साथ में अपनी तस्वीर भेजी है और बहुत ही खूबसूरत लिखावट में इन्होंने चिट्ठी लिखी है। तो भाई अभय जी, आपको भी बहुत बहुत होली मुबारक।
एक और तारीफ भरी चिट्ठी लिखी है नागेंद्र कुमार कुशवाहा, पिपराही बाजार, जिला शिवहर, बिहार से, और इनकी भी बहुत साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग है। लाल और काला, लाल नीला, इन्होंने 3 रंग इस्तेमाल किए हैं अपनी चिट्ठी में। और इन्होंने लिखा है कि शुक्रवार दिन भर दूसरी सभा के अंतर्गत जनाब रेहान फजल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम विवेचना सुना, ज्ञानवर्धक के साथ साथ काफ़ी जानकारी देने वाला था, जो हमने प्रसारित किया था 3 मार्च 2017 को।
बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी ये चिट्ठी डाक से आई है, और हमें डाक से आने वाली चिट्ठियों को देखकर और खुशी होती है और ईमेल्स भी हमारे पास आते हैं और इसी तरह से हमें पत्र लिखते रहे हमारे कार्यक्रमों के बारे में।
एक और चिट्ठी है संजय कुमार झा कुशोल मधुबनी से। इन्होंने लिखा है कि तारिक फतेह साहब को आप सब ने घेर लिया, जब राजेश जोशी प्रवेश करते हैं तो इंटरव्यू में तो कमाल ही हो जाता है। कुछ भी हो तारिक साहब प्रशंसनीय हैं, इतना साहस बहुत कम लोगों में होता है। ये हाल ही में जो फेसबुक पर हमने एक लाइव किया था तारिक फतेह के साथ, उसका जिक्र कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया आपका और इसको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है
जी। इसी के साथ ही एक ईमेल मैं लेना चाहूंगी, ये भेजा है किसिंगा ओडिशा से सुरेश अग्रवाल ने।
बहुत पुराने श्रोता है हमारे और अक्सर लिखते रहते हैं, क्या
और
कह रहे हैं?
जो आज सुबह प्रसारित किया है राम जेठमलानी के व्यक्तित्व के बारे में जो दिव्या आर्या और सलमान रावी ने बातचीत की थी, तो ये लिख रहे हैं कि सलमान रावी ने जो शब्द चित्र उनका खींचा है वो काफी अच्छा लगा इन्हें।
बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारी मैं देख रहा हूँ कि पत्र जो हैं वो तारीफ़ के हैं। लोग होली नज़दीक आ रही है, बहुत अच्छे मूड में हैं और हमारे कार्यक्रमों की तारीफ कर रहे हैं।
नमस्कार भारत में दिव्या आर्या की मैडम बीका जी गामा पर रिपोर्ट बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक लगी, उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा है दुनिया जहां में अमरीका में भारतीयों पर हो रहे हमलों पर मोहनलाल शर्मा की पड़ताल भी उन्हें शानदार लगी। साथ ही ये बोलते हैं कि राजेश जोशी का दिन भर प्रस्तुत करने का अंदाज इन्हें बहुत अच्छा लगता है, जो कि आज फिर राजेश जी जो है प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम को दिन भर।
आज भी और जब चुनाव परिणाम आएंगे 11 तारीख को, 11 मार्च को, मेरा ख्याल है कि उस दिन का प्रसारण भी राजेश जोशी ही करेंगे। चिट्ठी किसने भेजी है ये तो आप बता
जी। बिल्कुल, क्योंकि बहुत तारीफें हो रही तो मैंने सोचा कि पहले तारीफ ही कर लूं मैं। ये महेंद्र सहारण ने ढांबा झल्लार श्री गंगानगर राजस्थान से भेजी है।
तो आज चिट्ठियों में इतना ही, चलते चलते हम आपको अपना पता बता दें। अगर आप हमें डाक से चिट्ठी भेजना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप ईमेल भेजना चाहते हैं तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk। आपकी राय में अब इतना ही, नमस्कार।
चिट्ठियां लिखते रहिए, अब समय तो ज्यादा नहीं है तो सीधे सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं सुमिरनप्रीत कौर। बेंगलुरु में BCCI क्रिकेट अवार्ड्स की घोषणा हुई। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला राजेंद्र गोयल और पद्माकर शिवलकर को। वहीं BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन मिला शांता रंगस्वामी को। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को पॉली उमरीगर अवार्ड से नवाजा गया। वहीं रविचंद्रन अश्विन को दिलीप सरदेसाई अवार्ड से सम्मानित किया गया। विराट कोहली ने अपनी टीम को शुक्रिया कहा और साथ ही कहा कि उनका सफर इतना आसान नहीं था।
About my game. Even now, there are doubters and haters all around.
जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की तो मुझ पर लोगों को विश्वास नहीं था। आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरे काम पर विश्वास नहीं है और वो मुझसे नफरत करते हैं। मुझे अपने पर पूरा भरोसा है। जब तक मैं अपना काम पूरी मेहनत से कर रहा हूँ तब तक मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। और 2015 के बाद मैंने अपने आप पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर लेना बंद कर दिया है। मुझ में टैलेंट है और मेरी कोशिश है कि मैं जब भी खेलने जाऊंगा तब देश के लिए मैच जीत के आऊंगा।
विराट कोहली वो पहले भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें पॉली उमरीगर अवार्ड तीसरी बार मिला है। फिलहाल तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही है 4 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला, जो 1-1 से बराबर है। तीसरा मुकाबला इस श्रृंखला का शुरू होगा 16 मार्च से। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। बर्मिंगम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में वर्ल्ड नंबर 6 भारत की पीवी सिंधु का मुकाबला हुआ वर्ल्ड नंबर 39 दिनार दिया आयुस्टीन से। पीवी सिंधु ने 21-12, 21-4 से जीत दर्ज की, यानी पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश कर लिया है। जाते जाते टेनिस की बात, PNB पेरिबास ओपन में कल मुकाबला होगा ग्रेट ब्रिटेन की हेदर वॉटसन का वर्ल्ड नंबर 11 जोआना क्वांटा के साथ। आखिरी बार इन दोनों के बीच मुकाबला हुआ था 2013 में, जब हेदर वॉटसन को हार का सामना करना पड़ा था। स्पोर्ट्स की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
तो खेल समाचारों के बाद अब कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो चला है। मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। आपसे हमेशा की तरह अगली मुलाकात होगी कल सुबह भारतीय समय के मुताबिक 6:30 बजे। तब तक के लिए मुझे और सभी साथियों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभरात्रि।